الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورہ زمر کی آیت نمبر 9 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے. ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے مختلف لوگوں کا تقابل کیا ہے. ایک طرف اچھے لوگ ہیں اور دوسری طرف برے لوگ ہیں. کیا تقابل کیا ہے؟ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن ہوا قانت آنا اللیل ساجدن وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. کیا وہ شخص جو سجدے اور قیام کی حالت میں رات کے اوقات فرما برداری میں گزارتا ہے، آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کی امید لگا رکھتا ہے، وہ نافرمان رہنے والے کی طرح ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. تم فرماؤ، کیا علم والے اور بے علم برابر ہیں؟ عقل والے ہی نصیحت مانتے ہیں. اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے دو طرح کے لوگوں کا تقابل کیا. پہلے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ایک وہ آدمی ہے جو اپنے رات کے اوقات، رات کی گھڑیاں، رات کے لمحات کس بات میں گزارتا ہے؟ حالت سجدہ میں اور حالت قیام میں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے کر رہا ہے اور قیام کے اندر کھڑا ہے، اور اس کے ساتھ حالانکہ نماز پڑھ رہا ہے، راتوں میں نفل پڑھ رہا ہے، راتوں میں سجدے کر رہا ہے، اس کے باوجود وہ آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کا طلبگار ہوتا ہے، اس کا امیدوار ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک طرف یہ بندہ ہے کہ جس نے نمازیں بھی پڑھی، جو آخرت سے ڈرتا بھی ہے، جو اللہ کی رحمت کا امیدوار بھی ہے، یہ اور اس کے جو برعکس صفات والا ہے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے؟ دوسری طرف وہ شخص جس کو آخرت کا ڈر ہی نہیں، یا آخرت کو مانتا ہی نہیں، جسے رب کی رحمت کی کوئی امید ہی نہیں، جس کی راتیں غفلتوں میں گزرتی ہیں، جس کی راتیں گناہوں میں گزرتی ہیں، جو نماز پڑھتا ہی نہیں، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے تقابل کا ایک حصہ بیان کر کے دوسرے حصے کو ہمارے فہم پہ چھوڑ دیا، اور بڑی آسانی سے ہم نتیجے تک پہنچ سکتے ہیں کہ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا خدا کا فرما بردار اور نافرمان برابر ہیں؟ کیا رات کو سجدے اور قیام کرنے والا اور دوسری طرف گناہوں میں مبتلا آدمی برابر ہیں؟ کیا آخرت سے ڈرنے والا اور آخرت کو دل و دماغ سے نکال دینے والا برابر ہیں؟ کیا رحمت خدا بندی کا طلبگار اور امیدوار اور رحمت کی اصلا نہ طلب رکھنے والا نہ سوچ رکھنے والا، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ نہیں، دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اب ہمیں یہ کہا گیا کہ تم بتاؤ تم کیا ہو. اللہ تعالیٰ نے تو دو بندے بیان کر دیے، تم اپنے آپ کو دیکھو کہ تم کس کیٹیگری میں ہو. تم کیا ان لوگوں میں ہو جو عبادت کرنے والے، جو راتوں کو خدا کی بندگی میں گزارنے والے، جو سجدہ اور قیام کرنے والے، جو آخرت سے ڈرنے والے، جو رحمت کے طلبگار ہیں، تم یہ ہو، یا اس کے مد مقابل دوسرے لوگ ہو کہ جن کی راتیں غفلتوں میں، گناہوں میں، آخرت کی سوچ ہی کوئی نہیں، فکر ہی کوئی نہیں، کوئی اس کے بارے میں تصور ہی کوئی نہیں، رحمت کی کوئی طلب ہی نہیں ہے، یا تو وہ. ہم غور کر لیں کہ ہم کس کے اندر ہیں. تو اگر ہمارے اندر غفلت کی صورت پائی جاتی ہے تو ہم اس سے باز آئیں. دوسرا تقابل اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کیا جاننے والے، علم والے اور بے علم برابر ہیں؟ علم والے اور بے علم برابر ہیں؟ اس کا بھی الٹیمیٹ جواب یہی ہے کہ نہیں، علم والے اور بے علم برابر نہیں، عالم اور جاہل برابر نہیں. یہاں پر علم سے کیا مراد ہے؟ یہاں پر علم سے مراد ہے خدا کی معرفت. वो इल्म कि जो आखिरत में निजात देने वाला, वो इल्म जो खुदा की मारिफत तक ले जाने वाला, वो इल्म जो ईमान सही तक ले जाने वाला है, यह वो इल्म मुराद है। ये नहीं है कि दुनियावी इल्म के अतबार से कहा जा रहा है कि जनाब किसी ने फिलासफ़ी पढ़ी हुई है और किसी ने नहीं पढ़ी हुई तो क्या ये दोनों बराबर हैं। दुनियावी एतबार से तो बराबर नहीं, लेकिन अल्लाह ताला की बारगाह के अंदर ये जो इस तरह के दुनियावी उलूम हैं इनकी वो कदर नहीं है। इन सारी चीज़ों की कदर तब है कि जब इनसे ईमान सही हासिल हो। अगर ईमान नहीं तो फिर दुनियावी उलूम में को कितना माहिर हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अल्लाह ताला की बारगाह में वो जाहिल है जिसको उसके इल्म ने खुदा की मारिफत ना दिलाई, जिसको उसके इल्म ने अल्लाह पर ईमान ना दिलाया, उसका इल्म जहल है। अगरचे दुनिया के अंदर उसको जनाब पता नहीं क्या से क्या समझा जाता, जैसे आजकल हमारे लोगों का हाल है, मुसलमान कहलाने वालों का ये हाल है कि काफिरों के वो लोग जो बड़े बड़े साइंसदान गुजरे उनके साइंसी कारनामे बयान करेंगे अपने कॉलम के अंदर और अपनी जो है वो तहरीरों के अंदर, और उनके कारनामे बयान करके फिर उनको ऐसा करार देंगे कि जैसे माद अल्लाह खुदा के वलियों से ये बढ़ गए। हालांकि वो साइंसदान अगरचे कितना बड़ा था, अगरचे उसने बड़ी बड़ी इजादात की हैं, अगर वो ईमान से महरूम था तो फिर वो महरूम ही है, फिर वो जाहिली है, अगरचे साइंस का बहुत बड़ा इल्म रखता है। ये बातें बज़ाहिर तो लोगों को बड़ी बाद लोगों को बड़ी अजीब लगेंगी, लेकिन हकीकत यही है, ईमान से बड़ी दौलत कोई नहीं, ईमान से बड़ी दौलत कोई नहीं, कि आप जहन में रखें। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि क्या इल्म वाले और बे इल्म बराबर हैं? इल्म वालों का मर्तबा यकीनन बे इल्मों से बहुत बड़ा है। अच्छा, अब यहाँ पर जो दो बातें इरशाद फरमाई, दो तकाबुल किए गए, उसमें जो पहली बात है वो है रात के लम्हात में आ ना अल्लैल, रात की घड़ियों में सजदे करना, क्याम करना और बंदगी के अंदर रात गुजारना, ये बड़ी फजीलत वाली चीज़ है। रात के नफलों के बारे में दो चीज़ें, नंबर एक तो ये है कि रात के नवाफिल दिन के नवाफिल से अफजल है, एक बात। दूसरी बात यह है कि रात के नवाफिल बजाते खुद अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने के लिए बड़े मौसिर हैं। जो रातों को नफल पढ़ते हैं अल्लाह ताला का कुर्ब बड़ी तेज़ी से हासिल होता है, क्योंकि रात के नवाफिल में आप अल्लाह ताला करे हमें तौफीक मिले, कभी कभार इसकी तौफीक जिनको मिलती है वो जानते हैं कि रात में बंदा जब नफल पढ़ता है उस वक्त दिल हाजिर होता है, दिल ख्यालात से खाली होता है, तो उस वक्त तवज्जो अल्लाह अज़्ज़ा वजल की तरफ होती है, उस वक्त ज़हनी तौर पर आदमी बड़ा पुरसकून होता है, दिल दिमाग और ज़बान के दरमियान एक मुवाफ़क़त और मुआतात होती है। तो रात के नवाफिल के अंदर जो खुदा का क़ुर्ब है, खुदा की महब्बत है, वो बड़ी तेज़ी के साथ बंदे को हासिल होती है। अच्छा, फिर उसके साथ ही दूसरी बात उस बंदे की जो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाई, फरमाई यहज़रुल आखिरत व यरजू रहमत रब्बी, वो डरता भी है और उम्मीद भी रखता है। जो नेक बंदा है वो डरता भी है और उम्मीद भी रख, उसे आखिरत का डर भी है और उसे खुदा की रहमत की उम्मीद भी है। इसे कहते हैं खौफ और रजा, खौफ और रजा यानी खौफ और उम्मीद। ये खौफ और उम्मीद जो है ये बड़ी अहम चीज़ है। मोमिन को खौफ भी होना चाहिए और उसे उम्मीद भी होनी चाहिए। ये ना हो कि खौफ ऐसा गालिब हो कि उम्मीद असलन निकल जाए, और ये भी ना हो कि रहमत इलाही की ऐसी उम्मीदें बांध के बैठ जाए कि खौफ ही निकल जाए, ऐसा नहीं। खौफ भी हो और उम्मीद भी हो, इसकी बड़ी फजीलत है और मोमिन का वस यही होना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक है, हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि नबी पाक अलैहि सलातु वस्सलाम एक नौजवान के पास तशरीफ ले गए। वो नौजवान फौत होने के करीब था। नबी पाक अलैहि सलातु वस्सलाम ने उसको इरशाद फरमाया कि तुम अपने आप को कैसा पाते हो, अपने आप को कैसा फील कर रहे हो। उसने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की कसम मुझे अल्लाह ताला की रहमत की उम्मीद भी है और मुझे अपने गुनाहों का खौफ भी है। मुझे अल्लाह ताला की रहमत की उम्मीद भी है और मुझे अपने गुनाहों का खौफ भी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब मोमिन के दिल में इस मौके पर कि मरने का वक्त करीब है, मोमिन के दिल में जब ये दोनों बातें इस मौके पर जमा हो जाएं, तो अल्लाह ताला उसे वो चीज़ अता फरमा देता है जिसकी बंदा उम्मीद करता है और उस चीज़ से बेखौफ कर देता है जिससे वो डरता है। तो जब बंदा अल्लाह ताला की रहमत की उम्मीद रखता है तो अल्लाह ताला उसे رحمت عطا فرما دیتا ہے، اور عذاب سے ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ عذاب سے اس کو بچا لیتا ہے۔ یہ حدیث مبارک ترمذی شریف کی۔ تو رحمت کی امید اور عذاب کا ڈر خوف، یہ دونوں ہی بڑی اہم چیزیں ہیں۔ اچھا، دوسری جو بات یہاں پر آیت میں فرمائی گئی وہ یہ تھا کہ عالم و جاہل برابر نہیں۔ فرمایا کہ کیا علم والے اور بے علم برابر ہیں؟ یقیناً برابر نہیں۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عالم کی عابد پر فضیلت ایسی ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کی تمام ستاروں پر۔ عالم کی فضیلت عبادت کرنے والے پر ایسی جیسے 14ویں رات کے چاند کی تمام ستاروں پر فضیلت ہے، کہ چاند جیسے چمکتا ہے اور ستارے چھوٹی چھوٹی روشنی رکھتے ہیں، تو جو عبادت گزار ہیں ان کی روشنی تھوڑی تھوڑی ہے، اور جو عالم ہے اس کی روشنی چاند کی طرح ہے۔ تو یہ ہے عالم اور عابد کا فرق۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے کا حکم دیا، اور عبادت و ریاضت کی ترغیب دی، اور نیکیوں کی ان کو رغبت دلائے، اور پھر اس کے ساتھ ایک صبر کی ایک بڑی عظیم فضیلت کو بیان کیا۔ ارشاد ہوتا ہے، قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ وارض اللہ واسعہ انما یوفى الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ تم فرماؤ، اے میرے ایمان والے بندو، اپنے رب سے ڈرو، جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لیے اس دنیا میں بھلائی ہے، اور اللہ کی زمین وسیع ہے، صبر کرنے والوں ہی کو ان کا ثواب بے حساب بھرپور دیا جائے گا۔ تین چار باتیں ارشاد ہوئیں۔ پہلی بات تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ اے میرے ایمان والے بندو، اے میرے ایمان والے بندو، اپنے رب سے ڈرو، رب کا تقوی اختیار کرو۔ دوسری بات فرمائی کہ جو لوگ بھلائی کرنے والے ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے۔ اس آیت کے دو طرح اس کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ ایک ترجمہ تو وہ جو میں نے عرض کیا کہ جو لوگ بھلائی کرنے والے ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھلائی ہے، اور دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ اس دنیا میں بھلائی کرنے والے ہیں ان کے لیے بھلائی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو جو اچھائی کرنے والے ہیں، خیر کے کام کرنے والے ہیں، نیکی کا کام کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں آخرت کے اندر بھی بھلائی عطا فرماتا ہے اور دنیا کے اندر بھی انہیں بھلائی عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے ہمیں یہ حکم نہیں ہے کہ ہم دنیا کو چھوڑ دیں اور صرف آخرت کی طرف متوجہ ہو جائیں، یہ حکم نہیں۔ ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم دنیا کی بھی خیر طلب کریں، آخرت کی بھی خیر طلب کریں۔ جیسے قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے جس میں ہمیں دعا سکھائی گئی، اور ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا کے اندر بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آخرت کے اندر بھی بھلائی عطا فرما، تو دنیا کی بھی خیر آخرت کی بھی خیر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ اس دنیا میں بھلائی کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، ان کے لیے دنیا میں بھی بھلائی ہے، ان کے لیے آخرت میں بھی بھلائی ہے۔ اگلی بات ارشاد فرمائی کہ اللہ کی زمین بڑی وسعت والی ہے، کشادہ ہے، بہت بڑی۔ اللہ کی زمین بہت بڑی، یہ کس اعتبار سے ہے؟ کہ اس اعتبار سے ہے کہ اگر یہ ہجرت کے اعتبار سے ہے کہ اگر کوئی شخص کسی جگہ رہتا ہے اور وہاں رہتے ہوئے اس کے لیے نیکیاں کرنا مشکل ہے، اس کے لیے عبادت کرنا مشکل ہے، اس کے لیے گناہوں سے بچنا مشکل ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکام پہ چلنا مشکل ہے، تو وہ بلا وجہ وہیں نہ ڈٹا رہے کہ نہیں جناب میں نے یہ علاقہ نہیں چھوڑنا، بھلے جو مرضی ہو جائے، بھلے میں نمازیں پڑھ سکوں نہ پڑھ سکوں، بھلے میں گناہوں سے بچ سکوں نہ بچ سکوں، بھلے میری اولاد جو مرضی بن جائے، میں نے یہ علاقہ نہیں چھوڑنا۔ اور میں نہیں، اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، یہاں سے نکلو کسی اور جگہ چلے جاؤ۔ اور یہ ہجرت کے بارے میں حکم بھی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی جگہ رہتے ہوئے سمجھتا ہے کہ یہاں پر میں حکم خدا پہ عمل نہیں کر سکتا، میں یہاں پر رہ کے شریعت کے احکام پہ عمل نہیں کر سکتا، تو اس پر لازم ہے کہ وہ وہاں سے ہجرت کر جائے اس علاقے کی طرف جہاں جا کے وہ نیک عمل کر سکے۔ इसके बाद अल्लाह ताला ने सब्र वालों का अजर बयान किया। सब्र वालों का अजर यहाँ क्यों बयान किया गया, इसलिए कि मुत्तसिर यहाँ पर हिजरत का बयान हुआ, और हिजरत मामूली चीज़ नहीं होती, हिजरत मामूली चीज़ नहीं, क्योंकि हिजरत का क्या मतलब है, हिजरत का मतलब यह है कि इंसान अपने वतन को छोड़ दे, जिस वतन में पैदा हुआ, पला, बड़ा, बचपन, जवानी गुजारी, जिसकी गली गली से उसे मोहब्बत है, जिसके इलाके से मोहब्बत है, जहाँ उसके जान पहचान के लोग हैं, उसके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, उसका कारोबार भी हो सकता है, सेटल है वहाँ पर, एक खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहा है, वहाँ पर उसकी ज़िंदगी एक रिधम के अंदर चल रही है, लेकिन अल्लाह ताला की रज़ा के लिए वो अपने इन सारे के सारे मानूसात और मालूफात को छोड़ दे, अपना इलाका छोड़े, वतन छोड़े, घर वाले भी बाज़ों का छोड़ने पड़ जाते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें छोड़ना जो है ये सब्र के बगैर मुमकिन नहीं, जब तक बंदे की तबीयत में मुश्किलात को बर्दाश्त करने का मादा नहीं होगा तब तक बड़ा मुश्किल है कि कोई आदमी हिजरत कर सके। तो चूंकि हिजरत सब्र की एक बहुत अजीम सूरत है, हिजरत सब्र की एक बहुत अजीम सूरत है, तो अल्लाह ताला ने सब्र का अजर भी बयान फरमा दिया। इरशाद फरमाया इन्नमा युवफ्फस साबिरून अजरहुम बिगैर हिसाब, सब्र करने वालों को उनका अजर भरपूर दिया जाएगा, बेहिसाब दिया जाएगा, हिसाब ही नहीं कि अल्लाह ताला उनको कितना अजर अता फरमाएगा। यह है सब्र करने वालों का सवाब, जो सब्र करते हैं। सब्र करने वाला कौन है, जिसकी खसलत सब्र करना। एक आध मौके पे सब्र करने वाला साबिर नहीं होता, सब्र जरूर है वो कि किसी भी मुश्किल मौके पे सब्र कर लिया तो सब्र है, लेकिन बंदा साबिर नहीं है। बंदा साबिर तब है जब उसकी खसलत, आदत और वस्फ बन जाए कि वो सब्र करने वाला है। और सब्र की तीन सूरतें होती, एक सब्र होता है कि आदमी नेकियों पर इस्तिकामत हासिल करे, एक सब्र होता है गुनाहों से बचने पर उसे इस्तिकामत मिल जाए, और तीसरा होता है कि मुश्किलात को बर्दाश्त करे, मुश्किलात को, मुसीबतों को, तकलीफों को बर्दाश्त करे। ये तीन सूरतें हैं सब्र की। जब बंदा इन तीनों पर पूरा उतरता है, वो इबादात पे हमेशगी भी इख्तियार करता है, नेकियों पर हमेशगी इख्तियार करता है, गुनाहों से मुस्तकिल बुनियादों पर बचता भी है, मुश्किल आती है तो उसे फेस करता है, बर्दाश्त करता है, शिकवा नहीं करता, अल्लाह की रजा के लिए उसे बर्दाश्त कर लेता है, तो ये बंदा साबिरीन के गुरु में दाखिल हो जाता है। और ये वो है जिसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नमा युवफ्फस साबिरून अजरहुम बिगैर हिसाब, सब्र करने वालों को उनका अजर बेहिसाब भरपूर दिया जाएगा। ये सब्र करने की फसीलत। अब इसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने मुतअद्दद अहकाम दिए, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ए हबीब ये कहो, ए हबीब ये कहो, ए हबीब ये कहो, ए हबीब ये कहो। ये मुतअद्दद चीज़ें हैं जिनका अल्लाह ताला ने नबी पाक अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाया कि आप ये कहें, आप ये कहें, आप ये कहें, आप ये कहें। चुनाचे अब उनका बयान होता है। इरशाद फरमाया कुल इन्नी उमिरतु अन अअबुदल्लाह मुखलिसल्लाहुद्दीन व उमिरतु लिअन अकून अव्वलल मुस्लिमीन। ए हबीब तुम फरमाओ मुझे हुक्म है कि मैं अल्लाह की इबादत करूं, उसी के लिए दीन को खालिस करते हुए, मुझे हुक्म है कि मैं अल्लाह की इबादत करूं उसी के लिए दीन को खालिस करते हुए, और मुझे हुक्म है कि मैं सबसे पहले अल्लाह के हुजूर गर्दन रख दूं, मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का फरमा बरदार बनूं। दो बातें इरशाद हुई। पहली बात तो ये कि नबी पाक अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया गया कि खालिस अल्लाह की इबादत करें, सिर्फ अल्लाह की इबादत करें। और ये हुक्म क्यों, उसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि अंबिया किराम अलैहिस्सलाम कायनात की मुखलिस तरीन हस्तियाँ होती, जितना इखलास नबियों में होता है उतना किसी में नहीं होता, और ये इखलास होता है जिसकी वजह से उनके अमल जितने अजीम होकर अल्लाह की बारगाह में कबूल होते हैं किसी और के वैसे कबूल नहीं होते, कबूल होते हैं वैसे कबूल नहीं होते। इसीलिए नबियों को सवाब भी दूसरों से ज़्यादा दिया जाता है। तो अम्बिया अल्लाह के मुखलिस तरीन बंदे होते हैं। दूसरी बात कि हुक्म दिया नबी पाक अलैहिस्सलाम को, फरमाया गया कि आप ये कहें कि मुझे हुक्म है कि सबसे पहले मैं अल्लाह के हुजूर अपनी गर्दन रखूं, सबसे पहले। सबसे पहले क्यों, इसलिए कि नबी हमेशा बाअमल होते हैं। ऐसा नहीं होता कि दूसरों को तो कोई काम करने का बोलें खुद ना करें, सबसे पहले खुद वो करते हैं और मुख्तदा और पेशवा बनते हैं और दूसरों के लिए मिसाल कायम करते हैं और दूसरों के सामने एक बेहतरीन उसवा बन जाते हैं ताकि लोग देख के पैरवी करें। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अल्लाह ताला के हुजूर अपनी गर्दन रखी ताकि दूसरे भी आपके पीछे उसी तरह बाअमल बनने की कोशिश करें। इसके बाद अगली बात इरशाद फरमाई, कुल इन्नी अखाफु इन असैतु रब्बी अज़ाब यौमिन अज़ीम। तुम फरमाओ बिल फर्ज अगर मुझसे नाफरमानी हो जाए तो मुझे अपने रब से एक बड़े दिन के अजाब का डर है। ये नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमा रहे कि बिल फर्ज अगर मुझसे नाफरमानी हो जाए तो मुझे अपने रब से एक बड़े दिन के अजाब का डर है। ये नबी पाक अलैहिस्सलाम को क्यों फरमाएगा कहने का, ताकि हमें नसीहत हो, ताकि हमारी तालीम हो, उम्मत की तालीम हो कि जब नबी पाक अलैहिस्सलाम के दिल में अल्लाह ताला का ऐसा डर है, खौफ है, तो उम्मतियों को कितना डरना चाहिए। नबी तो मासूम है, बख्शा बख्शाया है, उसकी मगफिरत का तो वादा है, वो तो दूसरों की शफात करेगा। तो जब नबी के दिल में अल्लाह ताला का इतना डर है और वो अल्लाह ताला के जलाल और उसकी अजमत के पेश नज़र इतने डरते हैं तो उम्मतियों को कितना डरना चाहिए। इसके बाद इरशाद होता है قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ۔ تم فرماؤ میں اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں خالص اس کا بندہ ہو کر، تو اے لوگو تم اس کے سوا जिसकी चाहो इबादत कर लो। ए हबीब तुम फरमाओ बेशक नुकसान उठाने वाले वही हैं जिन्होंने अपनी जानों और अपने घर वालों को क़यामत के दिन खसारे में डाला, सुन लो यही खुला नुकसान है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपना तो फरमा दिया कि मैं तो सिर्फ अल्लाह की इबादत करता हूं, अपने दीन को अपनी इबादत को अल्लाह के लिए खास करता हूं, तुम्हारी मर्जी है जिसकी चाहो इबादत कर लो। ये उनको कहना जो है ये वो जो अल्लाह ताला की तरफ से इख्तियार है बंदे को कि चाहे तो ईमान इख्तियार करे चाहे कुफर इख्तियार करे, ये उसके इजहार के तौर पे, वरना तो नबी पाक अलैहिस्सलाम तो ईमान की दावत देने के लिए, इबादत इलाही की दावत देने के लिए थे। अब साथ ही बता दिया कि ए हबीब आप इनसे ये भी फरमा दे कि नुकसान उठाने वाले हकीकत में वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जानों और अपने घर वालों को क़यामत के दिन के खसारे में डाला। दुनिया में तो हो सकता है खुद भी खुशहाल रहे, अपने घर वालों को भी खुशहाल रखा, खुद भी आसाइशों में रहे, उनको भी आसाइशों में रखा, माल कमाया, खर्च किया, इंजॉय किया, फ़ायदा उठाया, लेकिन खुद को और अपने घर वालों को गुनाहों में डाला, कुफर में डाला, खुदा की बंदगी नहीं सिखाई, ना खुद की ना अपनी फैमिली को सिखाई, तो खुद भी खसारे में पड़े, अपने घर वालों को भी खसारे में डाला। तो फरमाया कि हकीकत में नुकसान उठाने वाले यही हैं जिन्होंने अपनी जानों को और अपने घर वालों को क़यामत के दिन खसारे में डाला, सुन लो यही खुला नुकसान है, यही खुला नुकसान है। तो ये बड़ी ही महरूमी और बदकिस्मती है कि बंदा अपनी जान को भी क़यामत के खसारे में डाले और अपने घर वालों को भी क़यामत के दिन के खसारे में डाले। हमारे यहाँ हम अपनी दुनियावी आसाइशें, अपनी फैमिली की दुनियावी आसाइशें, इसके ऊपर तो बड़ा तवज्जो देते हैं, दुनिया अच्छी हो जाए, हमारा फ्यूचर अच्छा हो जाए, हमारा मुस्तकबिल अच्छा हो जाए, हमारे बच्चों की तालीम बड़ी शानदार हो, इनको तमीज़ आए, अच्छे अंदाज में बोलने वाले हों, इनको अच्छी सी नौकरी मिल जाए, इनका कारोबार अच्छा हो जाए, इनको घर अच्छा सा मिल जाए, अच्छी अच्छी गाड़ियों में घूमें, दुनियावी उनकी चीज़ों की फ़िक्र तो है, लेकिन आखिरत का नुकसान जो हकीकी नुकसान है और सबसे बड़ा नुकसान है उसकी तरफ से आम तौर पर गफलत होती है, उसकी तरफ से आम तौर पर तवज्जो हटी होती है। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि हकीकी खसारा, खुला खसारा तो क़यामत का है, हकीकी खसारे में तो वो लोग हैं जो अपनी जानों और अपने घर वालों को क़यामत के दिन खसारे में डालने वाले हैं। اب عذاب کفار کی ایک نوعیت، جہنم میں کافروں کا عذاب کیسا ہوگا اس کی نوعیت ہے، اور ہمیں اس عذاب جہنم سے ڈرنے کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کے غضب سے ڈرنے کا حکم ہے. ارشاد ہوتا ہے، لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ يَا عِبَادِ فَاتَّقُونَ. ان کے لیے، کافروں کے لیے، ان کے اوپر سے آگ کے پہاڑ ہوں گے اور ان کے نیچے پہاڑ ہوں گے. اللہ اپنے بندوں کو اسی سے ڈراتا ہے، اے میرے بندو تو تم مجھ سے ڈرو. یہ آیت مبارکہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے کتنے ہی شاندار انداز کے اندر ہمیں قیامت کا، عذاب کا ڈر ہمارے دلوں میں پیدا کیا کہ ہم ان سے بچنے کی کوشش کریں اور خدا کا خوف ہمارے دلوں میں ہو. فرمایا کہ یہ کافروں کے لیے تو یہ حال ہوگا کہ ان کے اوپر آگ کے پہاڑ ہوں گے، ان کے نیچے پہاڑ ہوں گے، یعنی اوپر نیچے سے یہ آگ کے اندر اتنی شدید تکلیف کے اندر ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اسی سے ڈراتا ہے کہ یہ انجام ہو سکتا ہے. اگر خدا کی نافرمانی میں انتہا کو پہنچ گئے تو یہ انجام ہو سکتا ہے. تو یہ ہے جسے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، یا عبادی فتقون، اے میرے بندو تو تم مجھ سے ڈرو، مجھ سے ڈرنا تمہیں اس عذاب سے بچا لے گا اور مجھ سے بے خوف ہونا تمہیں اس عذاب میں ڈال سکتا ہے. اب اس کے بعد، دنیا و آخرت میں خوشخبری کے مستحق لوگ، ان کا بیان ہوتا ہے. ارشاد فرمایا، والذی نجتنب الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الى اللہ لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. اور جنہوں نے بتوں کی پوجا سے اجتناب کیا، جنہوں نے طاغوت کی پوجا سے اجتناب کیا اور اللہ کی طرف رجوع کیا، انہی کے لیے خوشخبری ہے. تو میرے ان بندوں کو خوشخبری سنا دو جو کان لگا کر کلام سنتے ہیں پھر اس کی بہترین بات کی پیروی کرتے ہیں. یہ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی اور یہی عقل مند ہے. اب یہاں پر دوسرے گروہ کا تذکرہ، اوپر تو کافروں کا تذکرہ ہوا کہ ان کا انجام کیا ہوگا، یہاں پر دوسرے گروہ کا تذکرہ، وہ کیا ہے؟ وہ اہل ایمان کا. اور وہ کیا کرتے ہیں؟ نمبر ایک، طاغوت کی بندگی سے بچتے ہیں. طاغوت کیا ہے؟ اللہ عز و جل کے علاوہ جن کی عبادت کی جاتی ہے وہ طاغوت ہیں، جیسے بت ہیں یا اور جتنی چیزوں کی عبادت کی جاتی ہے وہ طاغوت. طاغوت کے اندر سرکشی کا معنی، طاغوت طغیان سے، طغیان سرکشی کا معنی. باطل کے جو لیڈر ہیں، باطل کے جو سرکردہ افراد ہیں، ان کے لیے طاغوت کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اسی طرح بتوں کے لیے طاغوت کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اللہ عز و جل کے علاوہ جو عبادت ہے وہ تو نیکوں کی بھی ہوتی ہے، لیکن ان کے لیے طاغوت کا لفظ نہیں استعمال کر سکتے. تو فرمایا کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے طاغوت کی بندگی سے، عبادت سے، پوجا سے اجتناب کیا اور اللہ کی طرف رجوع کیا، اور اللہ کی طرف رجوع کیا، ان کے لیے خوشخبری ہے. لہم البشرا، ان کے لیے خوشخبری کس چیز کی؟ اللہ کی رضا کی، اللہ کی خوشنودی کی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فبشر عباد، میرے ان بندوں کو خوشخبری سنا. اب وہ کون سے ہیں، ان کے اوصاف کیا ہیں؟ مزید فرمایا، وہ جو کلام کان لگا کر سنتے ہیں پھر اس کی بہترین بات کی پیروی کرتے ہیں. یہاں کلام سے کیا مراد ہے اور اس کی بہترین بات کی پیروی کرنے سے کیا مراد ہے، اس کے بارے میں مفسرین نے متعدد باتیں ارشاد فرمائی. ایک بات تو یہ ذکر کی کہ وہ سنتے تو ہر بات ہے، اچھی بھی سنتے ہیں، بری بھی سنتے ہیں، دین کی بھی سنتے ہیں، خلاف دین بھی سنتے ہیں، لیکن پیروی اسی کی کرتے ہیں جو اچھی ہے، جیسے قرآن ہے، حدیث ہے، اچھی باتیں ہیں. تو سن تو لیتے ہیں باتیں، لیکن پیروی صرف احسن کی کرتے ہیں، اور احسن قرآن ہے اور قرآن ہی کی شرح حدیث. ایک بات. دوسرا معنی یہ بیان کیا کہ وہ کلام یعنی قرآن غور سے سنتے ہیں، और कुरान में जो किसी मामले में सबसे बेहतरीन बात बयान की गई है उस पर अमल करते हैं, उसकी इत्तिबा करते हैं। जैसे कुरान पाक के अंदर हमें इजाज़त है कि हम किसी से इंतकाम लें, हमारे ऊपर किसी ने ज्यादती की है तो हम उससे इंतकाम ले सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं, अक्ल व नकल सबका मुसलमा उसूल। लेकिन अगर हम उसे मुआफ़ कर दें ये उससे अफजल है, बदला लेना जायज़ है लेकिन मुआफ़ करना अफजल आसन है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरे वो बंदे जो बशारत के मुस्तहिक हैं, जिनको बशारत सुनाओ, वो हैं जो कलाम सुनते हैं, कुरान सुनते हैं, फिर उसमें जो आसन है उस पर अमल करते हैं। अगर बदला और मुआफ़ करना दो इख्तियार हैं तो मुआफ़ करने को इख्तियार करते हैं। इसी तरह कोई गरीब आदमी है, किसी गरीब आदमी को कर्ज दिया, अब उसे हम मोहलत भी दे सकते हैं, अदा नहीं कर सकता, हम उसे मोहलत भी दे सकते हैं और हम उसे माफ़ भी कर सकते हैं। तो मोहलत देने की बजाय उसको माफ़ कर दिया जाए, ये ज़्यादा अफसर, ये ज़्यादा फजीलत वाला है। अच्छा, इसी तरह सदका देना, सदका देना हम पोशीदा भी दे सकते हैं, अलानिया भी दे सकते हैं, इस तरह भी दे सकते हैं कि सबको पता चल जाए, और हम छुपा कर भी दे सकते हैं। छुपा कर देना ज़्यादा फजीलत वाला है, आहसन है। तो फरमाया कि कलाम सुनते हैं और आहसन तरीके को इख्तियार करते हैं। इनके बारे में अल्लाह ताला फरमाता है कि ये वो लोग हैं जिन्हें अल्लाह ने हिदायत दी, ये वो लोग हैं जिन्हें अल्लाह ने हिदायत दी और यही अकलमंद हैं। वह उलाइका हुम उलुल अलबाब, और यही अकलमंद है। अकलमंदी ये नहीं है कि दो को चार कैसे करेंगे, चार को आठ कैसे करेंगे, आठ को सोलह कैसे करेंगे। अकलमंदी ये है कि खुदा की रजा कैसे हासिल करेंगे, अल्लाह ताला के दीन की अच्छी से अच्छी बात पे अमल कैसे करेंगे, हकीकी अकलमंदी ये है। और ये मुकद्दम है पहली वाली अकलमंदी से। अब इसके बाद अजाब का मुस्तहिक नजात वाले के बराबर नहीं, जो मुस्तहिक अजाब है वो नजात पाने वाले के बराबर नहीं, और अजली बदबख्त को अजाब से कोई बचा नहीं सकता, ये अगली आयत के अंदर बयान किया गया। इरशाद होता है अफमन हक अलैहि कलिमतुल अज़ाब अफअंत तुंकिदु मन फिन्नार, तो क्या वो शख्स जिस पर अजाब की बात साबित हो चुकी है, जिस पर अजाब की बात साबित हो चुकी है, वो नजात वाले के बराबर हो जाएगा? हरगिज नहीं। फिर इरशाद फरमाया तो क्या तुम उस शख्स को जिसे आग में जाना है क्या तुम उसे बचा लोगे? नहीं, जिसने अपनी बद आमालियों से, अपने कुफ्र शिर्क से आग में ही जाना है तुम उसे हिदायत देके बचा नहीं सकते। जिसे अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने हिदायत नहीं देनी उसे तुम हिदायत नहीं दे सकते। अब ऊपर काफिरों के बारे में गुजरा था कि उनके ऊपर आग के पहाड़, उनके नीचे भी पहाड़ है। अब उसके बाद अल्लाह ताला जो अहले ईमान हैं, जो परहेजगार हैं, तकवे वाले हैं, अल्लाह ताला उनका अच्छा अंजाम बयान फरमाता है। उनको क्या मिलेगा? अल्लाह ताला वो इरशाद फरमाता है, चुनाचे इरशाद फरमाया लाकिनिल्लज़ीना तक़ौ रब्बहुम लहुम गुरफुम मिन फौकिहा गुरफुम मबनियतुन तजरी मिन तहतिहल अनहार वअदल्लाह ला युखलिफुल्लाहुल मीआद। लेकिन अपने रब से डरने वालों के लिए बुलंद महलात हैं, अपने रब से डरने वालों के लिए बुलंद महलात हैं, जिनके ऊपर मजीद बुलंद महलात हैं, उनके नीचे नहरें बहती हैं। ये अल्लाह का वादा है, अल्लाह वादा खिलाफी नहीं करता। सुभान अल्लाह, तकवे वालों की फजीलत देखें। आयत में अल्फाज क्या हैं? लाकिनिल्लज़ीना तक़ौ रब्बहुम, अल्लज़ीना इत्तक़ौ रब्बहुम, जो अपने रब से डरते हैं, जो तकवा इख्तियार करते हैं, उनके लिए फजीलत है कि उनके लिए जन्नत के बुलंदोबाला महल्लात हैं और उन महल्लात के ऊपर महल्लात हैं। यानी जैसे हमारे यहाँ तो हमारा तस्वुर क्या बन सर, डबल स्टोरी, ट्रिपल स्टोरी, हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा दौड़ाए तो हम तो ये समझते हैं कि खूबसूरत मकान हो और दो मंजिला हो, लेकिन ये हमारा तसव्वुर है, क्योंकि यहाँ जन्नत की बात है, जन्नत के महल्लात की बात है, जिसका हुस्न वैसे ही हमारी अक्लो दिमाग में आ नहीं सकता। और उसको अल्लाह ताला फरमाता है कि जन्नत के बुलंद महल्लात और उनके ऊपर मजीद महल्लात, महल के ऊपर महल होगा सोने चांदी का बना हुआ, अरबों खरबों नेमतों उसके अंदर मौजूद होंगी। तो फरमाया कि ये है अपने रब से डरने वालों के, मुत्तकी लोगों के लिए। और इसके नीचे नहरें जारी हैं और अल्लाह ताला फरमाता है ये अल्लाह का वादा है, ऐसे मुत्तकियों को ऐसे महल अल्लाह ताला देगा, ये अल्लाह ताला का वादा है, अल्लाह ताला वादा खिलाफी नहीं करता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी बात अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाई। तो तकवा और परहेजगारी जो है, तकवा और परहेजगारी ये जन्नत की आला नेमतों के हुसूल का जरिया है। तकवा है क्या? तकवे का आम सीधा साधा सा तर्जमा है अल्लाह ताला से डरना। दूसरा अगर आम फहम इसका माना बयान करें तो ये बनेंगे गुनाहों से बचना, अल्लाह ताला की नाफरमानी से बचना। छोटा गुना है बड़ा गुना है, छोटी नाफरमानी बड़ी नाफरमानी, हर नाफरमानी से बचना, इसका नाम तकवा है, ये है तकवा। तो जो कुफ्र से बचा, शिर्क से बचा, गुनाह कबीरा से बचा, गुनाह सगीरा से बचा, वो बंदा मुत्तकी है। अब उसके बाद फिर तकवे की और मजीद उससे भी आला मर्तबे कि शुबे की चीज से भी बचे आदमी। फिर उसके बाद ये है कि दुनिया में कसरत इन्हिमाक से बचे, कि दुनिया में डूब जाए आदमी, दुनिया की चीज़ों में लग रहे आदमी, इससे भी बचे, अगरचे हलाल ही उससे भी बचे। तो मुत्तकियों के लिए जन्नत की आला से आला नेमतें। अच्छा, यहां पर एक और बात मैं अर्ज करूं, वो ये है कि यहां पर अहदीस मुबारक के अंदर रात की नमाज जिसे क्यामुल लैल कहते हैं, क्यामुल लैल की फजीलत में भी ऐसी ही बातों का बयान है कि जन्नत के बुलंदोबाला महल, जन्नत के बुलंदोबाला महल उन लोगों के लिए हैं जो रात की खलवतों में, तन्हाइयों में नवाफिल पढ़ते हैं, नमाज़ें अदा करते हैं। जैसे तहज्जुद है, तहज्जुद क़ियामुल लैल की एक सूरत है। तो जो तहज्जुद गुजार हैं, सुबह तहज्जुद में उठते हैं, अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, नवाफिल पढ़ते हैं, उस वक्त नमाज अदा करते हैं, उनको जन्नत के ये बुलंदोबाला महलात अता किए जाएंगे। अब इसके बाद पहले जहन्नमियों का तस्किरा हो गया, फिर जन्नतियों का तस्किरा हो गया, काफिर जहन्नम में हमेशा रहेंगे, मोमिन जन्नत में हमेशा रहेंगे। तो वो दायमी ज़िंदगी है, अबदी ज़िंदगी। अब उस अबदी ज़िंदगी का जो असबाब है वो इस फ़ानी ज़िंदगी में, तो अल्लाह ताला इस दुनिया की, इस ज़िंदगी की फ़नाइयत को बयान करता है। इरशाद फरमाया, अलम तर अन अल्लाह अनज़ल मिन अस्समाई माअन फसरकहु यनाबीअ फिल अर्द थुम्म युख़रिजु बिही ज़रअन मुख़्तलिफ़न अल्वानुहु थुम्म यहीजु फ़तराहु मुस्फ़र्रन थुम्म यज़अलुहु हुतामा इन फ़ी ज़ालिका लज़िक्रा लिउलिल अल्बाब। क्या तूने ना देखा कि अल्लाह ने आसमान से पानी उतारा, फिर उसे ज़मीन में मौजूद चश्मों में दाखिल किया, फिर उससे मुख्तलिफ रंगों की खेती निकालता है, फिर वो खेती खुश्क हो जाती है तो तू देखता है कि वो पीली पड़ जाती है, फिर अल्लाह उसे टुकड़े टुकड़े कर देता है, बेशक इसमें अक्लमंदों के लिए नसीहत है। ये क्या है? दो बातें इसमें इरशाद हुई। एक तो अल्लाह ताला की कुदरत कि अल्लाह ताला जो है वो ऊपर से बारिश नाजिल फरमाता है, ज़मीन की गहराइयों में वो पानी चला जाता है, उससे फिर चश्मे फूटते हैं, फिर पानी का जो निज़ाम है वो इसके ज़रिए चलता है, फिर उस पानी से खेतियां सैराब होती हैं, खेतियां सैराब होती हैं तो बड़ी खूबसूरत जो है वो खेती बरामद होती है। अब वो तरोताज़ा है, वो लहलहा रही है, लेकिन आखिर में क्या होता है? वही खेती जो फ्रेश है, तरोताज़ा है, हरी भरी है, बड़ी खूबसूरत नज़र आ रही है, वो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ पीली पड़ना शुरू हो जाती है, उरूज से जवाल की तरफ, सब्जे से खुश्की की तरफ, जिंदगी से मौत की तरफ पीली पड़ जाती है, फिर उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, वो ऐसी हो जाती है रौंदी हुई और जिसमें जान नहीं है, बेजान हो जाती। तो अल्लाह ताला फरमाता है इस सारी बात में अक्लमंदों के लिए नसीहत है। वो क्या है? वो नसीहत ये है कि हमारी जिंदगी भी ऐसी है, हमारी ज़िंदगी भी ऐसी है कि हम फलते हैं, फूलते हैं, बढ़ते हैं, जवान होते हैं, जवान होते हैं, हम पे जो है वो जवानी बरसती है और हम जनाब बड़े ताकतवर और कुव्वत वाले, बुलंद हौसला, बड़ा कुछ बन जाते हैं। लेकिन फिर यही जिंदगी ढलना शुरू हो जाती है, फिर वही जवानी अधेड़ उम्र में बदलती है, वो अधेड़ उम्र बुढ़ापे के अंदर तब्दील होती है और फिर मौत आती है और बंदा ख़त्म। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि ये जो तुम्हारी ज़िंदगी है ये फसलों की तरह है, फसलें उगती हैं, लहलहाती हैं, लेकिन फिर ख़त्म हो जाती हैं, मिट जाती हैं। इसी तरह तुम्हारी ज़िंदगी है, बनती है, बढ़ती है, फिर एक दिन ख़त्म हो जाती है। तो ये फना होने वाली ज़िंदगी और इसके आगे हमेशा की ज़िंदगी, वो हमेशा की ज़िंदगी जहन्नम की भी हो सकती है, वो हमेशा की ज़िंदगी जन्नत की भी हो सकती है। अब गौर व फिक्र तुमने करना है कि कौन सी ज़िंदगी इख्तियार करनी, जन्नत की या जहन्नम की। इस फ़ानी ज़िंदगी के बाद की अबदी ज़िंदगी आसाइश आराम वाली चाहिए या तकलीफ़ और अजाब वाली चाहिए, ये वो है जो फरमाया इन नफ़ी ज़ालिका लज़िक्रा लिउलिल अलबाब, बेशक इसमें अक्लमंदों के लिए नसीहत है। अल्लाह तबारक व तआला हमें ये नसीहत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए, तकवा की दौलत अता फरमाए, मुत्तकी बनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अल अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।